نعم نعم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخواتين وزاد سوالوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا روحانی دنیا میں اولیاء اکرام کو ان کے سینئرز کی طرف سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا روحانی وارث تلاش کریں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے جو روحانی دنیا میں ہائرارکی ہے اور اس کا ڈیکورم ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں فقیر ویسے بھی اصول اور قانون کا بہت پابند ہوتا ہے اصول اور قانون کو وہ توڑتا نہیں خواہ کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے اس کا تو فقیر لوگ اس راہ کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو طور طریقے ہیں جو ڈیکورم ہے اس کی وائلیشن نہیں کرتے اگر کسی شخص کو ایک بار کسی جگہ کی ولایت عطا کر دی گئی تو پھر اس میں دخل اندازی بالکل نہیں کرتے اس کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ اپنے مرضی کے مطابق وہ چلائے سلسلوں کو اگر کہیں سرزنش ہوتی ہے یا ایڈوائس دی جاتی ہے تو وہ اس کے کنڈکٹ پر ہوتی ہے کہ اگر اس سے کہیں کوئی ایسی حرکت سرزد ہو رہی ہے جو فقر میں پسندیدہ نہیں ہے تو اس پر سرزنش اس کی ہو جائے گی لیکن اس کے کام میں دخل نہیں دیا جائے گا تو انسٹرکشنز اپنا روحانی وارث تلاش کرنے کے سلسلے میں دینے کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ وہ شخص انڈیپینڈنٹ ہے ان کا نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر مرید میں صلاحیت اور استعداد بالکل ہی نہ ہو تو کیا محض شیخ کی محبت و توجہ اسے کسی روحانی مقام پر پہنچا سکتی ہے یقیناً اس میں اس موضوع پر اس سے پہلے کئی بار بات ہوئی کہ اگر ہم اپنے شیخ سے صرف پیار محبت ہی کرتے چلے جائیں تو اسی کے ذریعے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو شیخ ہیں ان کے خادم کا مقام اس لیے بہت بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کی خدمت کر رہے ہیں تو شیخ انہیں بہت کچھ عطا کر جاتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اللہ اپنے قرب اور محبت کی خواہش ڈالتا ہے ڈالتا ہی ان دلوں میں ہے جن کی یہ خواہش اس نے پوری کرنی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ویسے تو یہ کہا جا رب تعالیٰ نے کہا کہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے وہ ہدایت کی بات ہے لیکن محبت اور قرب کی خواہش یہ تو انسان پر اپنے اوپر منحصر ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کے عشق کا جواب بڑے پازیٹو طریقے پہ اور بڑے پرزور طریقے سے دیتا ہے फिर नमाज देता है। किसी मुरीद का अपने शेख के लिए खुश एतकाद होना किस हद तक जरूरी है और क्यों? हम किसी शख्स की इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट ही नहीं कर सकते जब तक कि हम उससे या प्यार न कर रहे हों या उसे अपने से सुपीरियर ना मान लें। तो अपने शेख को अपने से सुपीरियर मानना अजहद जरूरी है इस बात के लिए कि हम उनको अपने शेख को फॉलो कर सकें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अगर हम उन्हें सुपीरियर नहीं मानते हैं तो हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, हम टाल देंगे। खुश एतकादी असल में जरा से मुख्तलिफ मायनों में आ जाएगी जो मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो खुश एतकादी से मुख्तलिफ किए थे। खुश एतकाद होना तो ये है कि इंसान अपने मुर्शिद को माफाकुल फितरत कुवतों का मालिक समझ ले या ये समझ ले कि मेरे मुर्शिद से कहीं कोई गलती हो नहीं सकती। यहीं पर एक जमाने में गुफ्तगु करते हुए मैंने आपके खिदमत में अर्ज किया था कि बहुत खतरनाक चीज होती है जब हम अपने शेख को सुपर ह्यूमन मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वो माफाकुल फितरत कुवतों का मालिक है। ये खतरनाक चीज है। होता यह है कि हम अपने शेख को जब सुपर ह्यूमन मान लेते हैं, माफाकुल फितरत कुवतों का मालिक मान लेते हैं, ये समझते हैं कि हमने दुआ करा ली अपने मुर्शिद साहब से, तो ये अब मुमकिन ही नहीं कि ये काम ना हो। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि शेख ठीक है, इल्म और तक्वे के एक बड़े मकाम पर फाइज हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन वो पैगंबर से कमतर दर्जे पर हैं। ये तो सिर्फ रब है जो चाहता है वो हो जाता है। ये सिर्फ रब है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो जिसकी दुआ चाहे कबूल करे, जिसकी दुआ चाहे रद्द कर दे। शेख के पास ये कुव्वत नहीं है, शेख के पास ये इख्तियार नहीं है। हाँ, उसके पास एक इख्तियार है कि वो रब के हजूर चाहे तो दुआ कर ले, लेकिन दुआ को कबूल करना, उसको पूरा करना, ये इख्तियार रब के पास है। और रब को ये बेहतर पता है कि मेरे किस बंदे के लिए क्या अच्छा क्या बुरा। हो सकता है कि आपने अपने शेख से कोई ऐसा काम की दुआ करवा ली जो आपके हक में लेटर ऑन वो मुनासिब नहीं है, आपके लिए बेहतर नहीं है, या रब ताला तो पूरी कायनात को चला रहा है, यूनिवर्स को, और इसका निजाम बहुत ही डेलिकेट तवाजन पर कायम है, बहुत डेलिकेट बैलेंस है, और रब इसका इक्विलिब्रियम कभी टूटने नहीं देता। हो सकता है कि उसकी ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स में वो कहीं फिट ना होती हो दुआ, तो रब ताला उसे न पूरी करे लेकिन उसको कंपनसेट कर दे किसी और जगह पर आपका कोई काम करके, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कंपनसेट कर दिया गया। तो जब हम इतने खुश एतकाद हो जाते हैं अपने शेख के बारे में कि हम ये समझते हैं कि ये दुआ कर देंगे तो काम डेफिनेटली हो जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं जाके मायूसी होती है। ये जो हमारे तजर्बे में बात आती है कि बहुत से लोग हैं जो अपने मुर्शद से शाकी नजर आते हैं, बहुत मोतकित थे उनके, बहुत करीब थे, लेकिन सडनली पता चला कि वो ये कह रहे हैं कि साहब कैसे मुर्शद हैं, मैंने इस दुआ का कहा था वो तो दुआ पूरी नहीं हुई, उन्होंने मांगी नहीं, अगर मांगी होती तो पूरी हो जाती। ये फिर इस किस्म के चीजें पैदा होती हैं। मुर्शद को, शेख को, ये तो हमें चाहिए कि हम माने कि वो इल्म में और तक्वा में हमसे बेहतर है, लेकिन उनको समझे हम इंसान, ऐसा इंसान जो मजबूर महज है रब के सामने, इख्तियार और ताकत कुलियतन रब के पास है। रब से मांगो वो अता करता है, मांगने से खुश होता है वो, ये एतकाद हम रखें तो हम खुद भी अल्लाह से मांगें और अपने मुर्शिद साहब से भी कहें कि मेरे लिए दुआ कर दें। लेकिन अगर वो दुआ पूरी ना हो किसी वजह से, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मेरे मुर्शिद भी रब ताला के सामने मजबूर महज हैं। ये मालिक तो रब है और वो अपनी मर्जी का मालिक है, जिसकी चाहे सुन ले, जिसकी चाहे ना सुने, उसको कोई कुछ कह फोर्स नहीं कर सकता। तो फिर आपकी एसोसिएशन अपने शेख के साथ एक लंबा अरसा चलती रहती है। हम कभी इस पर गौर नहीं करते कि अगर मेरे शेख वैसे ही हैं जैसे मैं उन्हें अपने खुश एतकादी की वजह से समझता हूं, तो उनका तो कोई बच्चा बीमारी ना हो कि वो दुआ कर दें बच्चा से ठीक हो गया। औलाद से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं दुनिया में किसी को, एक्सीडेंट ही ना हो उनकी औलाद का, उनकी औलाद कभी मुश्किल ही में ना आए, फिर उनकी खुद अपनी जात, लेकिन सब उनके साथ होता है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, एक बहुत बड़ी तादाद औलिया किराम की वो है जिन पर कोई इल्जाम लगा और वो झूठे इल्जाम में जान से चले गए, फांसी लग गए, चोरी का झूठा इल्जाम लग गया, जेल में पड़े रह गए, तोहमतें लगती रहती हैं औलिया किराम पर। तो ये सब इसलिए होता है कि वो खुद इंसान है। तो हम खुश एतकादी इस किस्म की न पालें अपने शेख के बारे में, लेकिन ये जरूर जहन में रखें कि वो हमसे बहरहाल बेहतर हैं, कि उनके पास हमसे ज्यादा इल्म है, हमसे ज्यादा मुत्तकी है। इनका एक और सवाल ये है कि मुर्शिद की जात से मोहब्बत की जाए या सिफात से? एक चीज अगर हम अपनी जिंदगी में नजर दौड़ाएं तो सामने आएगी कि किसी भी शख्स से कुर्बत की इब्तदा उसकी कुछ सिफात के लिए लाइकिंग से होती है। हम किसी शख्स से मिलते हैं, उसकी कुछ आदात या उसकी कुछ सिफात हमें भा जाती हैं तो हम दोबारा उनसे मिलते हैं और वो कुर्बत रफ्ता रफ्ता उनकी जात से प्यार में बदल जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी शख्स से पहले प्यार किया हो उसकी सिफात से बाद में प्यार हुआ हो। इब्तदा हमेशा सिफात से होती है। तो शेख के साथ भी ये होगा कि जब हम उनसे मिलते हैं तो उनकी कुछ खूबियां हमें भाती हैं, उनकी कुछ आदात हमें अच्छी लगती हैं, हम उन सिफात और आदात की वजह से उनसे जाके दोबारा मिलते हैं और रफ्ता रफ्ता उसकी जात के करीब हो जाते हैं। ये इन्होंने चीज पूछी है कि आपके मुर्शिद साहब ने आपको 3 एजाजात से नवाजा, खिलाफत, बेटा और जेब। आपके पास आने वालों में से किसी में अब तक ये काबिलियत पैदा क्यों नहीं हुई? इसका बात सिंपल जवाब है, मुझे अगर अपना बेटा उन्होंने बना लिया उसकी वजह यह नहीं थी कि मेरे अंदर कोई अच्छाई थी, वजह यह थी कि वो बहुत आला ज़र्फ इंसान थे, वो बड़े आदमी थे। जैसे बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि दूसरे को इज्जत वही दे सकता है जो खुद इज्जत वाला है। खानदानी आदमी दूसरे को हमेशा इज्जत देता है, इसलिए नहीं कि वो दूसरा आदमी काबिल इज्जत है, इसलिए कि इसका ब्लड ऐसा है कि वो दूसरे को इज्जत देने पर मजबूर है। सखी आदमी इसलिए नहीं किसी को अता करता कि लेने वाला उसका अहल है, ये उसकी जो सिफ्त है सखावत वो उसको मजबूर करती है कि मैं इसको दूं। मुझे इसमें रत्ती बराबर शक नहीं कि अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया था तो शायद इसलिए कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, गुनाहों से लुथड़ा हुआ, खामियों से भरपूर, तो शायद उन्होंने बेटा इसलिए बना लिया कि मैं सुधर जाऊं। और उनको यकीन मायूसी हुई होगी कि मुझ जैसे लोग सुधरा नहीं करते कभी। खिलाफत का किस्सा भी ये है कि कहीं कहीं हम किसी चोर को चोरी से रोकने के लिए कि वो चोरी ना करे उसको माल की रखवाली पर बिठा देते हैं कि चोर को ये हया आ जाएगी कि इस शख्स ने मुझ पर इतना एतमाद किया कि ये जानते हुए भी कि मैं चोर हूं उसने मुझे अपने माल की रखवाली पर बिठा दिया है, चोरी से रुक जाएगा वो बंदा। तो ये बड़े लोग जो हैं, जो साहिब इल्म हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, ये इंसानी नफ्सियात से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। तो अगर मुझ जैसे को अपनी खिलाफत अता कर दी तो उसके अंदर गालिबन ये एक वजह हो सकती है कि इसको अगर मैं अपना खलीफा बना दूं तो शायद इसको यही हया दुरुस्त कर दे कि अल्लाह के एक नेक बंदे ने मुझे खिलाफत अता कर दी है। और इसी तरह जो अपनी जेब उन्होंने अता फरमा दी मुझे, ये तरतीब जरा सी उलट रखी हुई है। सबसे पहले जेब अता हुई थी, फिर बेटा बनाया था, फिर खिलाफत मिली थी। तो ये उनकी सखावत थी, उनकी दरिया दिली थी। उनको मालूम था कि अगर मैंने अपनी जेब इसे दे दी तो इसके दिन फिर जाएंगे। तो उनकी सखावत की खूबी थी। ये जो तीनों चीजें मुझे अता हुई, इसमें मेरी कोई अहलियत नहीं थी, मेरे मुर्शद साहब का बड़ापन था, उनकी अजमत थी। मेरे पास आने वालों में मालूम नहीं कितने लोगों में ये पहले से ही खूबियां मौजूद होंगी, लेकिन चूंकि मैं कोताह नजर हूं, अपनी नाक से आगे देख नहीं सकता, मैंने ही उन्हें पहचान पाया कि वो इतने अजीम लोग हैं जो मेरे पास तशरीफ ले आए। तो यूं मैं उनको इन तीनों में से कुछ दे नहीं सका। तो ये कोताह नजरी मेरी है। मेरे पास आने वाले बड़े लोग हैं, ये मेरा ईमान है कि मेरे पास जितने भी लोग तशरीफ लाते हैं वो सब मुझसे बेहतर और मुझसे आला लोग हैं। तो वो खामी मेरी है कि मैं उनमें से पहचान नहीं पाता, कि उनके पहचान के मैं किसी को ये सब पेश कर दूं। ये सवाल इस पर तो बाकायदा मेरे ख्याल है दो इतवार हमने सर्व किए थे, मुख्तलिफ जो आलम हैं, आलम मलकूत है, आलम सिफली, आलम असबाब। और ये जो ऊपर हैं आलम मुख्तलिफ, उनमें आलम असबाब नहीं, आलम असबाब तो ये है जहां हम बैठे हैं। इस पर जिक्र कोई इस पर नहीं मिलेगा आपको कहीं जो हमने गुफ्तगू की हो, लेकिन जो बाकी आलम हैं उन पर तो तफसीली गुफ्तगू है। वो ले लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए तो आपको याद आ जाएगा सब कुछ। इनका एक सवाल ये बहुत गहरा और अच्छा है कि क्या तमाम बुलंद पाया साहिबान ड्यूटी औलिया इकराम का तो रूहानी तसर्रुफ तमाम जहानों और आलमीन में होता है, ख्वा वो आलम अलवी हो या आलम सिफली। क्या आलम अलवी से ऊपर 70 हिजाबात के अंदर और फिर उन 70 हिजाबात से भी ऊपर आलम रका में इनका तसर्रुफ होता है? ये डिपेंड करता है कि उसका वली अल्लाह का मकाम क्या है जो ड्यूटी पर है। लेकिन हर वली अल्लाह का तसर्रुफ का दायरा मुय्यन है, उसके मकाम से वो कमेंसरेट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी वली अल्लाह के पास लामहदूद इख्तियारात हों या लामहदूद तसर्रुफात हों। वो कमेंसरेट करेंगे उसके मकाम पर कि किस मकाम का वो वली अल्लाह है, इल्म के किस दर्जे पर फायज है, क्योंकि उसका मकाम और उसके तसर्रुफात वो बराए रास्त कमेंसरेट करते हैं उसके इल्म के साथ के इल्म के किस दर्जे पर है, कितना ज्यादा इल्म है, उतना ही बुलंद मर्तबा होगा वो, और जितना बुलंद मर्तबा होगा उतने ही उसके तसर्रुफात वसी होंगे। लेकिन आलम अलवी में, आलम रका में उनके तसर्रुफात नहीं होते। ये जो ड्यूटीज हैं ये आलमुल असबाब से मुतालिक हैं सब। और हाँ, ये जरूर एक फर्क आएगा जिसको शायद कंफ्यूज कर रहे हैं ये साहब जिन्होंने सवाल पूछा है। परवाज जो एक तसर्रुफात हैं और एक परवाज है उसकी, जैसे जनाब हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में ख्वाजा साहब ने फरमा दिया था अपने खलीफा जनाब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब से कि तुम्हारे इस शागिर्द की परवाज इतनी बुलंद होगी, वहां तक होगा। वो परवाज एक डिफरेंट चीज है। औलिया अकराम को अब आप उसे अगर तसर्रुफ कहना चाहें तसर्रुफ कह लें, लेकिन मैं उसको परवाज कहता हूं। आपको बहुत से ऐसे औलिया अकराम मिल जाएंगे जो आराम से बैठे आपसे आलम बरज़ख की बातें कर रहे होंगे, इस तरह जैसे कि वो यहीं के किसी मकाम का बयान कर रहे हों आपके साथ। आपको ऐसे औलिया अकराम मिल जाएंगे जो उधर आपने बात की उधर उन्होंने कश्म में देख के आपको जवाब दे दिया। गिरचे कम हैं लेकिन होते हैं। उनको कश्म इख्तियारी हासिल होता है, जब चाहे हालत कश्म में चले जाएं। लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उन औलिया अकराम की है जिन पे कश्म जारी होता है, वो अपनी मर्जी से हालत कश्म में जा नहीं सकते। वो तसर्रुफ है। ये अगला सवाल भी इसी से मुतालिक था, उसका जवाब तो मैं दे चुका कि क्या बुलंद पाया साहिबान ड्यूटी औलिया अल्लाह तमाम आलमीन और जहानों के रहायशियों के कलूब और ख्यालात पर तसर्रुफ रखते हैं, और क्या ये हकीकत है कि उनके तसर्रुफ के बगैर किसी जहन में कोई ख्याल भी पैदा नहीं होता? ये दुरुस्त नहीं है। ये वही खुश एतकादी है जिसका भी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे। यही हमारे रास्ते में आने वाले पॉट होल्स हैं जहां हमारा पांव उसके अंदर जा सकता है और हमें झटका लग सकता है कि हम ये समझते हैं कि कोई वली अल्लाह ऐसा है कि वो उसकी इजाजत के बगैर किसी के दिमाग में कोई ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। गलत। जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गवर्नर को जो खत लिखा था उसका एक जुमला बड़ा खूबसूरत था जो यहां फिट आ बैठता है कि इनकी माओ ने इन्हें आजाद जना है, तुम इन्हें अपना गुलाम कैसे बना सकते हो? वली अल्लाह किसी को गुलाम नहीं बना सकता, ये उसका तसर्रुफ हो ही नहीं सकता। इंसानों को रब ने आजाद पैदा किया है, उसको आजादी अता फरमाइए सोच की, इरादे की और अमल की। कोई आदमी किसी को गुलाम नहीं कर सकता। ये जो तसव्वुफ इतना बदनाम हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो बदनाम हुआ ही इन चीजों से है कि हमने वली अल्लाह को मालूम नहीं क्या बना के बिठा दिया। हालांकि वो तो गरीब इतना मजबूर है कि अपनी कमर पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकता, लेकिन है बड़ा आदमी इसलिए कि वो अल्लाह ने उसे इल्म अता फरमाया है, वो तक्वा में हमसे बेहतर है। वो उसकी अपनी बड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन ये कहना कि वो जो चाहे कर ले गलत है, वो नहीं कर सकता। सिर्फ उतना ही कर पाएगा जितना रब की तरफ से हुक्म हो जाएगा, रब की तरफ से इजाजत हो जाएगी। हम अगर हर चीज को एक लिमिट के अंदर, जो उसकी जायज लिमिट्स हैं वहां तक रखें, तो फिर गलतफहमियां नहीं पैदा होती। ये सवाल है इनका कि सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस में जनाब बीबी साहिबा बाईं जानिब मौजूद खवातीन की सफ में तशरीफ फरमा होती हैं और उन खवातीन की पेशवा कायद होती हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं भाई। जिस मुबारक महफिल का आपने जिक्र किया है, वहां जितने लोग भी जाके बैठते हैं उनकी तरबियत उनके मुर्शद ने इतनी कर दी होती है कि वो जिस बात को चाहे बयान कर सकें, और उनको ये तमीज हो कि कौन कौन सी बात ऐसी है जिसका बयान करना मुनासिब नहीं है, इजाजत नहीं है, वो जुबान पर नहीं लाते। मैं नहीं समझता कि कोई भी साहिब सलूक वली अल्लाह अगर उसकी रसाई उस महफिल तक है तो उस महफिल के अहवाल पब्लिकली इस तरह बयान कर सकेगा, इजाजत ही नहीं है। ये तो वो बातें हैं जो कि किताब में पढ़ी या मैंने सुनी सुनाई है, वरना उस महफिल के आदाब का भी सिर्फ उसको पता होगा जो इल्म के ऐसे मकाम पर हो। और दूसरी बात यह है कि अगर हम दो मिनट के लिए सोच लें कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई ब्रेक करके बयान कर देगा ये मामलात, तो ये तो वही बयान कर पाएगा जो उस मकाम पर है। तो एक गुनाहगार आदमी आपको कैसे बता देगा कि वहां उस महफिल में कहां पर क्या होता है? आप ये सवाल किसी साहिब इल्म से पूछ लीजिए जो आपको ये बता सके। इनका अगला सवाल भी ऐसा ही है, तो मैं अकली घोड़े दौड़ा के जवाब तो दे दूंगा, लेकिन इसका जवाब वो देगा जो इल्म के इस मकाम पर है। क्या कोई साहिब ड्यूटी वली अल्लाह गौस के साथ मीटिंग के दौरान गौस से इख्तलाफ कर सकता है? अगर नहीं तो उसकी वजह क्या है? पहले तो कुछ चीजों को क्लियर हम जहन में कर लें। मीटिंग का लुगती मायने तो ये हैं, डिक्शनरी के मायने मुलाकात। अब इसके इस्तलाही मायने ये हैं कि जहां कुछ लोग जमा हो जाएं, आपस में मिल बैठें और किसी मौजू पर ख्यालात का इजहार करें अपना अपना। अगर जो चेयर कर रहा है मीटिंग को उससे कोई इख्तलाफ ही नहीं कर सकता तो मीटिंग तो नहीं है, वो तो वाज है, तकरीर है असली तौर पर जब हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं तो वहां पर अदब के दायरे में रहते हुए बुनियादी चीज है कि अदब के दायरे में रहते हुए हर आदमी पर लाजिम है कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर दे अपनी राय का इजहार कर दे। तो मीटिंग चेयर चाहे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो या कोई गौस कर रहा हो तो मीटिंग है मीटिंग में तो अपने ख्यालात का इजहार न करना जुर्म है अपनी राय को न देना वो जुर्म है। तो ऐसे रुकन को तो सजा मिल जानी चाहिए कि उसने अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन का इजहार नहीं किया मीटिंग के अंदर। औलिया कराम तो बड़े लोग होते हैं जो उस महफिल में बैठ के किसी ने ख्यालात का इजहार किया अपनी राय दी है उसको अप्रिशिएट करते हैं चाहे वो कितने ही उससे इख्तलाफ रखती हो बात और उसको दिल में नहीं कोई कैरी करता। तो अल्लाह ताला आपको उस मकाम पर ले जाए कि आप गौस की मीटिंग में बैठें तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप खुले दिल से अपनी राय का इजहार कीजिए वहां आप अप्रिशिएट होंगे आपको कोई बुरा नहीं समझेगा बल्कि आप अपनी राय ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देंगे तो शायद सजा के तौर पे या तो मुअत्तल हो जाए आप या कुछ अरसे के लिए इल्म सल्ब कर लिया जाए आपका या बिल्कुल खारिज कर दिया जाए कि आप इसके अहल ही नहीं हैं कि महफिल में आके बैठें इस मीटिंग को अटेंड करें आप। इनका अगला सवाल यह है कि क्या जूनियर वली अल्लाह सीनियर वली अल्लाह को ब्लाइंडली फॉलो करता है या किसी मामले में अपनी सजेशन भी दे सकता है। इसमें दो तरह के मामलात होते हैं। एक तो हुक्म है और हिदायत हैं उनको तो ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। दूसरी चीज है कि कोई ड्यूटी असाइन की गई है तो उस पर आपको पूरा हक हासिल है जूनियर वली अल्लाह को कि वो अपनी राय का इजहार कर दे कि साहब अगर इसको इस तरह कैरी मैं इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करूंगा तो इसका लैश बैक ये आ जाएगा अगर इसकी बजाय मैं इसको इस तरह से कर लूंगा तो इसमें ये नहीं होगा। वो अगर दुरुस्त है तो मान ली जाएगी फौरन लेकिन हुक्म आंखें बंद करके मानना पड़ता है क्योंकि उसकी तमाम तरह जिम्मेदारी फिर सीनियर पर है। आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि जी मुझे जो इंस्ट्रक्शंस थी मैंने कैरी आउट कर ली। क्या मुख्तलिफ हम मनसब औलिया कराम रूहानी फराइज के अंजाम दही में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हालांकि वो डायरेक्टली उस टीम का हिस्सा नहीं होते। कोऑपरेशन तो चलती है इस राह में कोऑपरेट तो कर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई वाकया रूनुमा होने वाला हो तो ज़हन में बार बार पहले से ही उससे मुतालिक मुख्तलिफ सवालात आने लगते हैं। क्या इंसान को लाशाऊरी तौर पर उस सूरत हाल के लिए तैयार किया जा रहा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो टाइम हो गया, इसका जवाब ज़रा लंबा हो जाएगा, तो इसको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे इसका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा। नेक्स्ट संडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।